आज है 18 अप्रैल दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। चोगम सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन। कठुआ बलात्कार कांड के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी के बीच रस्साकशी, क्या है इसका निहितार्थ?
दोनों जमातें अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सियासी बयानबाजियां, सियासी पैंतराबाजियां कर रही है।
और दुनिया जहान में सुनिएगा, रासायनिक हथियारों को क्यों खतरनाक माना जाता है?
वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने भी काफी इस तरह के वेपन्स को यूज किया था, खासकर डिफोलिएशन वाले और उस तरह के वेपन्स जो थे वो यूज किए थे।
ये सब होगा कार्यक्रम में आगे, लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे हैं। यहां सवेरे उन्होंने ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर बात की। साथ ही मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ब्रिटेन के आने का स्वागत किया और कहा कि इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। इटली के राष्ट्रपति सेर्जियो मैट्रेला ने सीनेट की स्पीकर इसाबेला कासिलाटी से अनुरोध किया है कि वो देश में नई सरकार बनाने के लिए माहौल पैदा करने और मौजूदा तनाव की स्थिति को खत्म करने में उनकी मदद करें। उन्होंने स्पीकर से गुजारिश की है कि वो मध्यमार्गीय दक्षिणपंथी राजनीतिक नेताओं और फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी के नेताओं के साथ बात करें और साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना तलाश करें। बीते महीने हुए चुनावों में फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी मतदान के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। यह पहली बार है जब राष्ट्रपति मैट्रेला ने गठबंधन सरकार की संभावना की ओर इशारा किया है। इसाबेला कासिलाटी ने कहा कि वो जल्द ही अलग अलग पार्टी के नेताओं की बैठक आयोजित करेंगी।
Ho ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo nei termini già espressi.
जैसा कि मीडिया में पहले से ही चर्चा है, मुझे राष्ट्रपति की तरफ से एक संदेश मिला है। मैं राष्ट्रपति मैट्रेला का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मैं उन्हें इसके बारे में ताज़ा जानकारी देती रहूंगी। मैंने जिस तरह सीनेट की स्पीकर के नाते अपना कर्तव्य निभाया है, वैसे ही इस आदेश पर भी काम करूंगी। बैठकों के बाद क्या बात होगी और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके बारे में मैं समय समय पर जानकारी देती रहूंगी। इटली में सीनेट की स्पीकर इसाबेला कासिलाटी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में तैराकों पर शार्क मछली के आक्रमण के दो हादसों के बाद वहां आयोजित किए जाने वाला सर्फिंग कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड सर्फ लीग ने कहा है कि ये कार्यक्रम रविवार तक होना था, लेकिन शार्क के आक्रमण होने के कारण इसे फिलहाल रद्द किया जा रहा है। वर्ल्ड सर्फ लीग की कमिश्नर कैरोन पेरो ने कहा है कि उनके लिए ये फैसला लेना कतई आसान नहीं था।
We take the safety of our surfers extremely seriously, and this decision was really difficult.
हमारे लिए हमारे सर्फर की सुरक्षा बेहद गंभीर मुद्दा है और इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लेना वाकई में बेहद मुश्किल फैसला था। हमने सर्फर समेत कई लोगों से बात की और हालात का पूरा जायजा लेने और स्थानीय जानकारी का विश्लेषण करने के बाद ही ये फैसला किया कि इस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए रोकना ही सबसे बेहतर होगा। वर्ल्ड सर्फ लीग के कमिश्नर कैरोन पेरो के शब्द। उम्मीद की जा रही है कि क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कैस्ट्रो आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनका परिवार बीते 6 दशक से क्यूबा की सत्ता संभाल रहा है। क्यूबा की संसद में औपचारिक तौर पर उनके इस्तीफे की घोषणा हो सकती है, हालांकि इसके बाद भी राउल कैस्ट्रो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने रहेंगे। कैस्ट्रो के इस्तीफे के बाद देश की सत्ता कौन संभालेगा, इस सिलसिले में मंत्रियों का मतदान कराया जाएगा। हालांकि इस मतदान के नतीजे गुरुवार तक ही घोषित किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति 57 साल के मिगुएल डियाज केनाल देश के नए राष्ट्रपति होंगे। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नज़र रखने वाली संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने कहा है कि उन्हें अब तक इस बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि वो सीरिया में केमिकल हमले की जगह पर कब से अपनी जांच की शुरुआत कर सकते हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। राष्ट्रमंडल देशों की सरकार प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और समर्थन में लंदन की सड़कों पर आज प्रदर्शन हुए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे और प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की। भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मुखातिब होंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम तय हैं और अब से कुछ ही देर पहले मैंने लंदन में बीबीसी हिंदी में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम से बात की। परवेज ब्रिटिश प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर थे। मैंने शुरू में पूछा प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा मसरूफियत वाला प्रोग्राम है यहाँ लंदन में, इसलिए कि रॉयल्टी के लोगों से मुलाकात है, सरकार के लोगों से मुलाकात है, टेरेसा मे के साथ में मुलाकात है। आज मुझे ऐसा लगा कि उनके खिलाफ यहाँ आवाजें ज्यादा बुलंद हुई हैं लंदन में। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है और यहाँ से वो काम भी करता है जो भी होता है प्रधानमंत्री, उसके बाहर एक जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन था साउथ एशियन सॉलिडेरिटी ग्रुप की तरफ से, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी की विजिट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और खासतौर पर भारत में जो कथित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनके बैनर्स उनके हाथ में थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है राजेश जोशी के यहाँ नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी एक जुलूस निकला। ज्यादातर लोगों के हाथ में भगवा ध्वज थे, यानी सैफरन कलर के कुछ झंडे थे, और कुछ के हाथ में भारत के झंडे भी थे, और वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज लगा रहे थे।
परवेज आलम, आपकी आवाज लंदन से हमारे जो सामईन जो श्रोता हैं वो पुराने वाले जो श्रोता हैं वो तो पहचानते ही हैं। ये मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं परवेज साहब के, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता होंगे जिनको लेकर के वहाँ विवाद है, यानी उनका समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। क्या किसी और राष्ट्र नेता को लेकर इस तरह का विवाद वहाँ है?
ये बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने किया है राजेश जोशी, इसलिए कि मैं जब यहाँ पहुंचा पार्लियामेंट स्क्वायर ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर भी कहलाता है, वहां मैंने देखा कि चारों तरफ भारतीय समुदाय के ही लोग थे, या यूं कहिए कि साउथ एशियन देखने में, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि भारत में कौन किस जगह से है, लेकिन ये कि बाकी देशों की तरफ से कहीं कुछ ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा था कि तमिलों की तरफ से कुछ होगा, इसलिए कि श्रीलंका में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन तो खासा हुआ है, तो एक तरफ से ये सिचुएशन है। मैं ये कहना चाहता था कि जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला, वो इसलिए भी चोगम में इस बार जोर पकड़ गया, यहाँ चोगम से रिलेटेड ही, यानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उन्होंने ही इस इशू को कई बार उठाया। मैंने जो संजय हजारिका हैं जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं, उनसे इंटरव्यू किया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम एक बड़े लेवल पे एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, जिस रिपोर्ट को कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता है उन्होंने उसको लॉन्च किया, उसकी वजह से खासा मीडिया में कवरेज हुआ ह्यूमन राइट्स का। दूसरी बात ये हुई कि जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिज्म में अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया, उसमें उन्होंने कहा लगभग 200 मिलियन पाउंड्स के आसपास वो एक राहत कोष बना रही हैं और एक फंडिंग कर रही हैं लड़कियों की एजुकेशन के लिए।
इस वक्त आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े हैं, अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगा सकते हैं?
देखिए चोगम में अक्सर ये कहा जाता है कि वाइनिंग एंड डाइनिंग, मतलब आइए बैठिए बात करिए मुस्कुराइए फोटो खिंचवाइए, और चोगम जो है ब्रिटेन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये मुझे दिलचस्प बात याद आ गई ब्रिटेन के हिसाब से, इसलिए कि ब्रिटेन ब्रेक्सिट मोड में है।
ये थे लंदन से परवेज आलम।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और दिन भर में अब चर्चा अमेरिका और उत्तर कोरिया की। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए, ये खबर गर्म है। माना जा रहा है कि ये यात्रा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भविष्य में होने वाली मुलाकात का रास्ता साफ करने के मकसद से की गई। सर्वप्रिया सांगवान की रिपोर्ट।
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की संभावनाएं हकीकत के काफी करीब हैं। अमरीकी मीडिया सूत्रों के हवाले से बता रहा है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA निदेशक माइक पोम्पियो गुपचुप तरीके से उत्तर कोरिया के दौरे पर गए, जहां उनकी किम जोंग उन से गुपचुप मुलाकात हुई। पोम्पियो ईस्टर के मौके पर यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को उत्तर कोरिया के गुप्त दौरे पर गए थे। ये वही वक्त था जब दक्षिण कोरिया के संगीतकारों का कॉन्सर्ट उत्तर कोरिया में हो रहा था, जिसमें खुद किम जोंग उन तालियां बजाते देखे गए थे। पोम्पियो के दौरे का मकसद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच सीधी बातचीत का रास्ता साफ करना था। CIA ने तो नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया कि अमरीका के उच्च अधिकारियों ने उत्तर कोरिया से बात की है।
जापान और हम उत्तर कोरिया के मसले पर एक हैं। हमारी मुलाकातों और बातचीत के बाद हम शायद जल्दी ही किम जोंग उन से भी मिलें। अगर सब ठीक रहा तो ये मुलाकात जून या उससे थोड़ा पहले हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इससे पहले ट्रंप ने खुद बताया था कि किम के साथ आगामी बैठक के लिए 5 संभावित जगहों पर विचार किया जा रहा है, यानी ट्रंप और किम की मुलाकात के लिए ग्राउंड वर्क जारी है। किम के साथ ट्रंप की होने वाली बातचीत से जापान भी थोड़ा चिंतित दिख रहा है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे बातचीत के लिए अमरीका गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ 2 दिवसीय वार्ता शुरू कर रहे हैं। जैसा कि शिंजो आबे ने बताया कि इस बातचीत का मकसद भी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर कोरिया पर चर्चा करना है।
उत्तर कोरिया के मुद्दे पर मैं साफ करना चाहूंगा कि हमारा मकसद है कि उत्तर कोरिया पूरी तरह परमाणु और मिसाइल योजनाओं को बंद कर दे।
शिंजो आबे के शब्द। शिंजो आबे ने यह भी कहा कि ये अमेरिका और जापान के दबाव का ही नतीजा है कि उत्तर कोरिया बातचीत के लिए तैयार हुआ है। किम जोंग के साथ मुलाकात के फैसले के लिए भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने उत्तर कोरिया का दौरा किया है। पहले भी कभी कभी दोनों देशों के राजनयिक और प्रतिनिधियों का दौरा हुआ करता था। इससे पहले 2014 में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक जेम्स क्लैपर उत्तर कोरिया की जेलों में बतौर कैदी रह रहे 2 अमरीकी नागरिकों को वापस अपने देश लाने की कोशिशों के तहत वहां गए थे। हालांकि उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही घोषणा की थी कि उन्होंने उत्तर कोरिया की सीधी बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले किसी अमरीकी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया के शासक से कभी आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई है।
ये रिपोर्ट आपने सुनी सर्वप्रिया सांगवान से। ये BBC हिंदी सेवा है। हैदराबाद शहर को आज जगह जगह पर हंसिया हथौड़े वाले लाल झंडे और बैनरों से सजाया गया है, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 22वीं कांग्रेस आज से शहर में शुरू हुई। CPM भीतरी और बाहरी दोनों चुनौतियों से गुजर रही है। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों को साथ आना चाहिए, पर पूर्व महासचिव प्रकाश करात कांग्रेस से किसी तरह के गठजोड़ के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बाद अपने दूसरे किले यानी त्रिपुरा को भी पार्टी खो चुकी है। अब वो सिर्फ एक राज्य यानी केरल में सत्ता में है। पार्टी कांग्रेस पर इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की यह पार्टी कांग्रेस में पहला मुद्दा यह है कि क्या पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने को तैयार होगी, और दूसरा मुद्दा कि क्या सीताराम येचुरी को फिर से पार्टी महासचिव चुना जाएगा या नहीं। येचुरी ने पार्टी कांग्रेस में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया। आज की परिस्थिति में स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की सख्त जरूरत है ताकि RSS बीजेपी को हरा सकें। ये करना जरूरी है ताकि विकल्प तैयार किया जा सके। ये थे सीताराम येचुरी के शब्द। आने वाले 3 दिनों में येचुरी का ये बयान चर्चा होगा ही, लेकिन इसके दौरान किस तरह की चुनौतियां येचुरी के सामने आएंगी उनका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। दरअसल CPM इस वक्त एक विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। त्रिपुरा के बाद CPM सिर्फ केरला में सरकार चला रही है और वहां उसका विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, और केरला जैसे इकाई कांग्रेस के साथ किसी तरह के समझौते के खिलाफ है, खासकर वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां उसको अभी भी कुछ समर्थन मिल रहा है। इस रुख को पार्टी में कहा जाता है प्रकाश कारत पिनारई विजन लाइन, और इसके विरोध में है वेस्ट बंगाल और येचुरी की लाइन जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक आनंद सहाय ने सीपीएम की दुविधा का स्पष्ट किया।
और विल दे लाइक टू बी इनसाइड द पावर स्ट्रक्चर? आई थिंक दिस इज द की क्वेश्चन बिफोर द पार्टी कांग्रेस।
सीपीएम के सामने यही सवाल है कि क्या वो आरएसएस बीजेपी के नरेंद्र मोदी को चुनावों में हराना चाहते हैं या कांग्रेस जैसे पक्ष को जो विरोध पक्ष है। ये थे आनंद सहाय के शब्द। और इस सवाल का जवाब एक और विषय पर निर्भर है। वो विषय है कि क्या येचुरी को एक और बार महासचिव का पद संभालने का मौका दिया जाएगा या नहीं।
ये थी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उसके 2 मंत्रियों को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने बलात्कार के एक अभियुक्त के समर्थन में निकाली गई रैली में शिरकत की और तिरंगा झंडा लहराया था। इसके बाद कल बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, पर कहा गया है कि इससे राज्य की गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस पूरे विवाद में सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर घाटी में अपनी खोई हुई साख हासिल करने में काफी हद तक सफलता भी हासिल की है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
बीजेपी के साथ राजनीतिक गठबंधन करने पर कश्मीर में पहले ही पीडीपी के विरुद्ध क्रोध की लहर थी, लेकिन जम्मू में बीजेपी के कुछ मंत्रियों की तरफ से रेप के आरोपियों का पक्ष लेना घाटी में पीडीपी विरोधी भावना को हवा दे रहा है। कठुआ रेप और हत्याकांड के 3 अहम पहलू हैं। एक ये कि इस अपराध के पीछे मुसलमान गुजर परिवारों को कठुआ से खदेड़ना था। दूसरा ये कि पूरे भारत में दोषियों को सख्त सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। और तीसरा पहलू राजनीतिक है, क्योंकि इस घटना को लेकर गठबंधन सरकार के साझेदारों पीडीपी और बीजेपी के बीच तनाव पैदा हो गया है। इस तनाव से पीडीपी या बीजेपी भले ही अपनी अपनी छवि ठीक करना चाहते हों, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि दोनों के बीच सरकार में बने रहने पर सहमति पाई जाती है। पत्रकार और लेखक बिलाल फुरकानी।
क्योंकि पीडीपी का जो मेन वोट बैंक है वो कश्मीर है और जम्मू का जो वोट बैंक है वो बीजेपी का है, इसलिए दोनों जमातें अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सियासी बयानबाजियां सियासी पैंतराबाजियां कर रही है। और इससे अंदर अंदर जो उनके दरमियान है इख्तलाफ अंदर से उतना ज्यादा नहीं लग रहा है जितना आम लोगों को सामने नजर आ रहा है कि हुकूमत गिरेगी।
विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बीजेपी और पीडीपी 2 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां होने के बावजूद गठबंधन सरकार चला रही हैं, मगर एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजियां उन्हें उस राजनीतिक खसारे से नहीं बचा सकती जो जम्मू और कश्मीर में इन्हें हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुदस्सिर याकूब कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद ही कश्मीर में सरकार विरोधी भावनाएं उभरी और इससे पीडीपी की सियासी साख इतनी प्रभावित हो चुकी है कि कठुआ केस में अगर न्याय भी हुआ तो पीडीपी उस राजनीतिक खसारे से खुद को नहीं बचा पाएगी।
वादे थे कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए मरकजी सरकार पर दबाव डालेंगे, खुद भी ऐसे इकदाम उठाएंगे ताकि हुर्रियत को टेबल पे लाया जा सके, तो हम देखते हैं कि वैसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने जो ट्रस्ट था उसको ब्रीच किया है और इनका नुकसान हुआ है।
शायद यही कारण है कि आज जम्मू में एक समारोह को संबोधित करते हुए पीडीपी की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पनप रही सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की।
द एंटायर सेट ऑफ रिचुअल्स इन दिस पार्ट ऑफ आवर स्टेट रिवॉल्व्स अराउंड द कन्या पूजन बिकॉज़ हियर वी लिटरली वर्शिप द गर्ल्स एज इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा।
महबूबा का कहना था कि हिंदुओं में लड़की को दुर्गा का आकार समझकर कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन समाज की सोच में अब खराबी पैदा हो गई है। उधर विरोधी दलों ने कठुआ मामले को लेकर पीडीपी को घेर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्यमंत्री से कहा है कि विधानसभा का हंगामी स्तर बुलाकर रेप के लिए मृत्युदंड का कानून बनाया जाए। इस बीच कई सप्ताह से कश्मीर के शिक्षा संस्थानों में कठुआ रेप और हत्या केस में तुरंत न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर पुलिस विद्यार्थियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दे रही है, जिससे विद्यार्थियों में गुस्सा पाया जाता है।
मैं यहाँ की कश्मीर की एक बेटी हूँ, मैं यहाँ पर सीधे चल रही थी, इन्होंने मुझे पीछे से पत्थर मारा और मेरे पे ये क्या बोलते हैं इसको टायर गैस मारा, तो मैं मजबूर हो गई पत्थर उठाने पे। हमें मजबूर करते हैं,
ये गवर्नमेंट ही इंसिडेंट जिम्मेवार बनती है जो स्टोन पेल्टिंग या बाकी इंसिडेंट्स होते हैं।
गौरतलब है कि जम्मू में बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करके ही पहली बार 87 सदस्यों की विधानसभा में 25 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह कठुआ केस के संदर्भ में बीजेपी को तमाम शर्तें मानने पर मजबूर कर लिया, उससे पीडीपी का भले ही फायदा न हो लेकिन जम्मू में बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। 7 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास डूमा शहर में कथित रासायनिक हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर कई मिसाइलें दागी और अब रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW की एक टीम जांच के लिए वहां पहुंची है। रासायनिक हथियार कितने खतरनाक होते हैं और इन्हें खत्म करने के लिए दुनिया में क्या कोशिशें की जा रही हैं। इस बार दुनिया जहान में आदर्श राठौर ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। सीरिया के डूमा शहर में कथित रासायनिक हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमले के शिकार हुए बच्चे सांस लेने के लिए जूझ रहे थे। इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सीरिया के कुछ ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। सीरिया के सहयोगी रूस ने इन हमलों का विरोध किया, मगर यूरोपीय संघ आदि हमले के समर्थन में थे। सवाल उठता है कि जब सीरिया में इतने दिनों से चल रही लड़ाई में जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है और हर तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर डूमा पर हुए इस हमले पर इतना आक्रोश कैसे फैल गया? विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला बताते हैं कि दूसरे हथियारों के मुकाबले रासायनिक हथियार कितने खतरनाक माने जाते हैं।
हर वेपन जो है वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन जरूर करता है, तो उसी में एक रिलेटिव स्केल है कि आप डायनामाइट TNT यूज कर लें या आप न्यूक्लियर वेपन यूज करें या आप उसमें बायोलॉजिकल वेपन यूज करें, तो केमिकल वेपन्स को आमतौर पे एक बुरा, बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ज्यादातर आम जनता पे नुकसान ज्यादा होता है और इससे आप टारगेट नहीं कर पाते कि केवल आर्म फोर्सेस को ही अटैक करेंगे, ये तो सारी सिटी में फैल जाता है एकदम। उसके मारे इसको ज्यादातर अप्लाई जो है नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी देखा गया है कि केमिकल वेपन्स जो है वो यूज होते हैं। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने भी काफी इस तरह के वेपन्स को यूज किया था, खासकर डिफोलिएशन वाले और उस तरह के वेपन्स जो थे वो यूज किए थे। तो ये जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभी होती है।
रासायनिक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयंकर तबाही मचा देने वाली क्षमता रखने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में रेडियोलॉजिकल, जैविक और परमाणु हथियार भी शामिल हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं रासायनिक हथियार। मगर क्यों? पल्लव बागला।
पुअर मैन्स वेपन बोले जाते हैं केमिकल वेपन जो है। दे आर चीप टू मैन्युफैक्चर, इजी टू स्टोर और इजी टू यूज, और इनका इफेक्ट जो होता है वो और वेपन्स के मुकाबले ज्यादा घनघोर होता है, तो इसके मारे केमिकल वेपन्स का अक्सर यूज होता है। बायोलॉजिकल वेपन्स का अभी यूज जो है वो बहुत कम देखा गया है, वॉर के टाइम पे तो मैंने नहीं देखा, अभी तक मेरे पास कोई जिक्र नहीं है। उसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बहुत एक एक्सपेंसिव कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और वो वॉर में केवल एक बार यूज में हैं, जो कि अमेरिका ने जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पे यूज किए थे। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो है वो पुअर मैन वेपन्स मान के अक्सर डिप्लॉय किए जाते हैं। सीरिया में अभी कौन सी गैस हुई उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि अगर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हुआ है, क्लोरीन तो बहुत आम तौर पे यूज होती है, हर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाती है, तो क्लोरीन तो एक बहुत आम गैस है, तो इसको अगर किसी ने केमिकल वॉरफेयर में यूज किया है तो इसका तो इस्तेमाल बड़ा आसान है।
रासायनिक पदार्थों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला 100 साल पहले शुरू हुआ। इसकी शुरुआत क्लोरीन से हुई थी, मगर इन 100 सालों में बेहद घातक केमिकल वेपन तैयार हो चुके हैं। यूके केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर रेजिमेंट के पूर्व कमांडर हमेश टी ब्रेटन गॉर्डन रासायनिक हथियारों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं।
The very first chemical weapon was chlorine, which is a choking agent, and it was designed more.
क्लोरीन सबसे पहला रासायनिक हथियार था। ये दम घोटता है। वैसे तो इसका मकसद लोगों को बेबस करना है, मगर इससे मौतें भी होती हैं। पहली बार 1915 में यह इस्तेमाल हुआ। इसके बाद मस्टर्ड गैस आई, जो शरीर पर घाव बना देती है। बाद में नाजियों ने कीटनाशकों से नर्व एजेंट बनाए। इससे उन्होंने कई लोगों को मारा। 1984 से लेकर 1988 तक ईरान इराक युद्ध में नर्व एजेंट जमकर इस्तेमाल हुए, जो कि नर्व सिस्टम को ठप कर देते हैं। इराकी कुर्दिस्तान के हलबजा में तो एक ही दिन में 5,000 लोगों की मौत हो गई थी।
रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए भी किया जाता रहा है। 1995 में जापान के ओम शिनरिकियो संप्रदाय के सदस्यों ने सरीन नर्व गैस जैसे एक रासायनिक पदार्थ से टोक्यो सबवे सिस्टम पर हमला किया था, जिसमें 13 यात्रियों की मौत हो गई थी और 54 जख्मी हो गए थे। रासायनिक हथियारों के खतरे को समझते हुए साल 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का गठन हुआ था, जिसका लक्ष्य रासायनिक हथियारों को खत्म करना है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। आज 192 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें सीरिया भी शामिल है, और सीरिया अपने केमिकल हथियार नष्ट करने का दावा कर चुका है। फिर ये हथियार आ कहां से रहे हैं? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनोज जोशी बताते हैं कि इन हथियारों को आसानी से छिपाया जा सकता है।
अगर उनको कभी शक होता है कि यहाँ पे केमिकल वेपन्स हैं, तो वो इंस्पेक्टर जाते हैं और चेक करते हैं। पर सीरिया ने जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन नहीं किया था, जैसे सब लोगों ने जो है 1990s में साइन किया, तो इन लोगों ने साइन नहीं किया था। तो जब 2013 में घूटा में केमिकल अटैक हुआ था, तो उस समय ओबामा ने धमकी दी थी कि हम मिसाइल अटैक करेंगे, तब उस जमाने में रूस के कहावे पे उन्होंने कहा था चलो हम भी इसको साइन कर देते हैं। तो अक्टूबर 2013 में उन्होंने साइन किया, उन्होंने 1000 टन डिक्लेयर किया। कई लोग सोचते हैं कि 1000 टन जो है झूठ बोला है और छिपा के रखा है कुछ ना कुछ। चक्कर ये है कि केमिकल वेपन्स जो है लोग छिपा सकते हैं इसको।
ये भी कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट और अन्य विद्रोही संगठनों ने जब विभिन्न इलाकों में कब्जा किया, तब सीरिया सरकार द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार उनके हाथ लग गए। ऐसा भी शक है कि हाल ही में डूमा में जो हमला हुआ, वो किसी ऐसे ही संगठन की ओर से सीरिया सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो सकता है। लेकिन अगर OPCW को डूमा में रासायनिक हमले के सबूत मिल जाएं और ये सिद्ध हो जाए कि इसके पीछे सीरिया सरकार का हाथ था, तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनोज जोशी संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं के बारे में बताते हैं।
जो भी ये इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, यूएन के साथ इनका रिश्ता होता है, और यूएन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कंप्लेन करेगा कि फलाना फलाना हम वहां गए, हमने इंस्पेक्ट किया। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत ओनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द राइट टू टेक यू नो प्यूनिटिव एक्शन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये फैसला ले सकता है कि सीरिया में एनीथिंग मीनिंग सीरिया को ब्लॉकेड कर सकता है, सैंक्शंस इंपोज कर सकता है, सीरिया में मिलिट्री एक्शन ऑर्डर कर सकता है। बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस भी मेंबर है, चीन भी मेंबर है, एंड दे हैव ऑल हैव वीटो। तो जब तक अनलेस दे आर अग्रीड, तो नो एक्शन विल टेक प्लेस। और इस समय वहां सीरिया की पॉलिटिक्स ऐसी है कि रशिया इज यू नो सपोर्टिंग असद।
परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को इस्तेमाल न करने को लेकर अलग अलग करार हैं, और कुछ देशों ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं तो कुछ ने नहीं। फिर भी दुनिया भर में सहमति है कि युद्ध की स्थिति में इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं करना है। बावजूद इसके विभिन्न देश इन्हें इस्तेमाल करते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इनका इस्तेमाल रोकना है तो आपसी सहमति से बहिष्कार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
दुनिया जहान प्रस्तुत कर रहे थे आदर्श राठौर, और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। 7 अप्रैल से शुरू हुए आईपीएल 2018 15वां मैच आज खेला जाएगा। अगर हम अब तक की टीम का विश्लेषण करें तो क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन क्या कहते हैं?
जैसे अगर आप पहले 8-10 दिन के टूर्नामेंट अगर देखें तो सबसे बैलेंस्ड टीम नजर आई है हैदराबाद। बैटिंग में मजबूत है, बॉलिंग में मजबूत है, फील्डिंग जबरदस्त है, और इसीलिए घरेलू मैचेस भी जीती और अवे मैच भी। उसके बाद मेरे हिसाब से नंबर लगता है राजस्थान का, क्योंकि पहली मैच बुरी तरह हारने के बावजूद बहुत अच्छा कमबैक रहा है।
और आज आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसमें रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अब तक 4,559 रन बनाए हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में हो रहे कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे हैं। इटली के राष्ट्रपति सेर्जियो मैटरेला ने सीनेट की स्पीकर इजाबेला कासेलाटी से अनुरोध किया है कि वो देश में नई सरकार बनाने के लिए माहौल पैदा करने और तनाव की स्थिति को खत्म करने में मदद करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि दुनिया के देशों पर कर्ज ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी से इन देशों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इसका तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने और फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। मैं राजेश जोशी अब सभी साथियों की ओर से आप सबसे विदा चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।